भाग सात, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और न्याय, लिबर्टी, इक्वेलिटी, प्रॉपर्टी एंड जस्टिस, नागरिकता एवं राजनीतिक मनुष्यता की परिभाषा में ही अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। राजनीति का यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकता है। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है। जिस समाज में नागरिक के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वह समाज उतना ही अधिक उन्नतिशील माना जाता है। इन अधिकारों के बदले जो कार्य व्यक्ति को करने पड़ते हैं, उन्हें कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू समझना चाहिए। जिसे हम अपने दृष्टिकोण से अपना अधिकार मानते हैं, उसी को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने पर कर्तव्य माना जाएगा। यदि हमें जीवन का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम दूसरे व्यक्तियों को जान ना लें। यदि हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहने का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम दूसरे धर्म के अनुयायियों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। यदि हमें दूसरे की आलोचना करने का अधिकार है, तो यह भी आवश्यक है कि दूसरों के द्वारा अपनी आलोचना सुनना और सहन करना भी हम अपना कर्तव्य समझें। जिस समाज में मनुष्य अपने अधिकारों का उचित प्रयोग और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते हैं, वही समाज वास्तव में सुखी और संपन्न बन सकता है। अधिकारों के स्वरूप और विकास के संबंध में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ने ही मनुष्य को अधिकार प्रदान किए हैं। अधिकार मानव स्वभाव के आवश्यक अंग हैं। अधिकारों को हम स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिनके लिए हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आरंभ होने के पूर्व ही मनुष्यों को प्राकृतिक ओर से अधिकार प्राप्त थे। लॉक ने अधिकारों के विषय में लिखा है कि समाज के संगठन के पूर्व जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, तब भी वह प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करता था। लॉक पहले उदारवादी लेखक हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। थॉमस पेन ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के विकास में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने व्यापक प्रभाव डाला। रूसो ने यहाँ कहा है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्रता का अधिकारी है, किंतु सभ्यता और समाज उसे जंजीरों से जकड़ देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन एडम स्मिथ, रिकार्डो और अर्थशास्त्र के अन्य व्यक्तिवादी लेखकों ने किया है। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उदारवादी राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। आजकल प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को उचित नहीं माना जाता। प्राकृतिक से भिन्न भिन्न लेखकों के भिन्न भिन्न अभिप्राय होते हैं। कुछ लोग प्रकृति का अर्थ संपूर्ण जगत को मानते हैं, जिसमें चेतन और अचेतन तत्व शामिल हैं। कुछ उसे केवल जड़ पदार्थों का पर्यायवाची मानकर उसमें चेतन प्राणियों को शामिल नहीं करते। कुछ विचारकों का प्रकृति से तात्पर्य मानव स्वभाव होता है। कुछ लोग प्रकृति का अर्थ ईश्वरीय या नैतिक मानते हैं। अन्य लोग प्राकृतिकता से मनुष्य की आरंभिक और अविकसित समाज पूर्व अवस्था का बोध कराते हैं। अतः भिन्न भिन्न लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। कुछ लोग इन्हें ईश्वर प्रदत्त अधिकार मानते हैं। ग्रीन और दूसरे आदर्शवादियों के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों से तात्पर्य नैतिक अधिकारों से है। लॉक के अनुसार अधिकारों को प्राकृतिक इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य ने उन्हें राजनीतिक समाज की स्थापना के पूर्व अपने जातीय विकास की आरंभिक अवस्था में ही प्राप्त कर लिया था। हॉब्स के मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समाज पूर्व अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने प्राकृतिक अधिकारों को मानव स्वभाव की अतरंग अवस्था बताया है। प्राकृतिकता से अर्थ में स्पष्टता न होने से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों में भी मतभेद पाए जाते हैं। कुछ लेखक जैसे अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक कहते हैं और अन्य लेखक इसी दास प्रथा को अप्राकृतिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। कुछ विचारक स्त्रियों और पुरुषों की समानता को अप्राकृतिक समझते हैं तो अन्य लोग उसे प्राकृतिक मानते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं और दूसरे लोग इसे मनुष्यकृत विशेषाधिकार बताकर इसकी आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी लेखक के प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर विचार करें तो उसमें असंगति पाई जाएगी। उदाहरण, स्वतंत्रता और समानता दो प्राकृतिक अधिकार हैं और दोनों का ही क्षेत्र असीमित है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं तो उच्छृंखलता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समानता का अधिकार व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम समाज में समानता लाने का प्रयत्न करेंगे तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक हो जाएगा। अतः प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में अधिकारों की व्यवहारिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस सिद्धांत में एक दोष यह भी है कि इसके अनुसार समाज और उसके संगठन को अधिकारों का विरोधी समझा जाता है। रूसो का विचार था कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में तो स्वतंत्र था, लेकिन समाज की स्थापना से उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई। रूसो का विचार था कि सामाजिक संगठन और सभ्यता के विकास से हमारा नागरिक जीवन पतन के गर्त में गिरता चला गया, परंतु स्वयं रूसो ने बाद में स्वीकार किया कि यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य ने अपने अधिकारों की प्राप्ति राजनीतिक समाज में रहकर ही की है और उनकी सुरक्षा भी समाज के अंदर ही रहकर कानून के द्वारा हो सकती है। अराजकता के वातावरण में अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा संभव नहीं। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति वैधानिक अवस्था में हुई है। राज्य कानून बनाकर हमारे अधिकारों की सृष्टि करता है। न्यायालय हमारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मनुष्य को प्रकृति से कोई अधिकार नहीं मिलते। अधिकारों की परिभाषा संविधान और कानून के द्वारा की जाती है। अधिकार असीमित नहीं होते, अपितु परिस्थितियों के अनुसार उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है। जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार हम उसी सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक किसी राज्य के कानूनों ने उनको स्वीकार कर लिया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों को विचारकों की कल्पना मात्र समझता है। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना निरी मूर्खतापूर्ण है। बोंदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। उपयुक्त सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि कानून केवल अधिकारों को सुरक्षित रखता है, उनका सृजन नहीं करता। स्पेंसर का कथन है कि राज्य अधिकारों की रचना नहीं करता, वह समाज की परंपराओं द्वारा स्वीकृत अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारों का वास्तविक आधार जनमत और लोगों के नैतिक विचार में खोजना चाहिए। लास्की का विचार है कि अधिकारों का पालन स्वभाव और परंपरा पर निर्भर है, ना कि कानून की लिखित धारा पर। टीएच ग्रीन ने अनुसार नैतिक दृष्टि से कानून का विरोध करना भी नागरिक का अधिकार हो सकता है। वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत में सच्चाई का अंश अवश्य है, लेकिन इस सिद्धांत में अधिकारों के औपचारिक पहलू पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का धीरे धीरे विकास हुआ है। अधिकारों का स्रोत किसी देश की ऐतिहासिक परंपराओं को में देखना चाहिए। एडमंड वर्क का कथन है कि इंग्लैंड में नागरिक के अधिकारों का आधार वहां की राष्ट्रीय परंपराओं को समझना चाहिए। ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिवर्तन से अधिकारों के चरित्र में भी परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों और रोम के साम्राज्य में दास रखना स्वतंत्र नागरिक का अधिकार समझा जाता है, क्योंकि वहां की परंपरा इस अधिकार को स्वीकार करती है। वर्तमान काल में दास रखने की परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए किसी भी सभ्य देश में दास रखना नागरिकों के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वर्तमान काल की ऐतिहासिक परिस्थितियां प्राचीन यूनान और रोम की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार पूंजीवादी युग में असीमित संपत्ति का अर्जन और उनके द्वारा दूसरे मनुष्य के श्रम का शोषण संपन्न नागरिक का अधिकार है। समाजवादी देशों में इतिहास का एक चरण आगे बढ़ जाने से व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार नहीं माना जाता। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार चिरस्थायी नहीं है, अपितु परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत का एक दोष यह है कि परंपराओं को जब अधिकारों का आधार मान लिया जाता है तो प्रगति के विरोधी नई परिस्थितियों में नए अधिकारों का विरोध यह कहकर करते हैं कि यह अधिकार सर्वथा नवीन है और ऐतिहासिक परंपरा उन्हें स्वीकार नहीं करती। फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के मौके पर क्रांति विरोधी तत्वों ने परंपरा और रूढ़ियों के आधार पर नए राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग का विरोध किया था, परंतु वास्तव में यह ऐतिहासिक सिद्धांत का रूढ़िवादियों द्वारा दुरुपयोग है। ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल भावना परिवर्तन की विरोधी नहीं अपितु समर्थक है। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहले इंग्लैंड के उपयोगितावादी लेखक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। इनका कथन है कि समाज में केवल वे अधिकार मान्य हो सकते हैं जो उस समाज के बहुसंख्यक सदस्यों के लिए लाभकर और उपयोगी हों। अधिकारों का उद्देश्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वार्थों का साधन करना नहीं, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों और अधिकतम सुख पहुंचाना है। बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार उपयोगिता ही अधिकारों के निर्णय की कसौटी है। लॉस्की के कथनानुसार भी लोक कल्याण अधिकारों का आधार है। जिन परिस्थितियों के अभाव में मनुष्य की उन्नति रुक जाती है, उन्हीं परिस्थितियों के उत्पन्न करना और सुरक्षित रखना अधिकारों का लक्ष्य है। उपयोगितावादी सिद्धांत में एक नई कठिनाई यह है कि उपयोगिता की नापतोल नहीं हो सकती, और बेंथम का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसका स्पष्ट व्याख्या की जा सके और जिसे ठीक ढंग से क्रियावान किया जा सके। उपयोगितावादी लेखक प्राय व्यक्तित्व स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं और इन्हें समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लिए हितकर समझते हैं। जैसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वयं स्वीकार किया कि उपयोगितावाद और व्यक्तित्व स्वतंत्रता में कोई तार्किक संगति नहीं है, और दोनों में संघर्ष होने पर वे व्यक्तित्व स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे। किंतु जॉन स्टुअर्ट मिल और हेरोल्ड लॉस्की सामाजिक हित के लिए निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहेंगे। अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का समर्थन टी एच ग्रीन जैसे आदर्शवादी भी करते हैं। आदर्शवादी लेखकों के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए नैतिक उन्नति की परिस्थितियां उत्पन्न करना है। हीगल के अनुसार व्यक्ति की उन्नति राज्य की उन्नति में शामिल है, अतः व्यक्ति राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। कांट और ग्रीन इस मत से सहमत नहीं है। ग्रीन के अनुसार अधिकार उन परिस्थितियों को कहते हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आदर्शों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं अवसरों और सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक विकास है, इसलिए आदर्शवादी लेखक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर विशेष जोर देते हैं। वैधानिक सिद्धांत को टी एच ग्रीन अपूर्ण मानते हैं। यह सिद्धांत केवल ऐसे अधिकारों की चर्चा करता है जिन्हें अब तक राज्य और कानून के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, किंतु आदर्शवादी ऐसे नए अधिकारों की भी मांग करता है जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है और जिन पर भविष्य में नागरिकों की नैतिक प्रगति निर्भर है। वास्तव में आदर्शवादी सिद्धांत भी दोष रहित नहीं है। हमारे नैतिक अधिकार क्या हैं? अधिकारों की निश्चित करने का सही मापदंड क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आदर्शवादी लेखकों के मतों में भी एकता नहीं है। क्या व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नैतिक है? क्या शिक्षा या संपत्ति के अधिकार मताधिकार को सीमित करना अनैतिक है? इन प्रश्नों का उत्तर लेखक व्यक्तिगत धारणाओं के अनुसार देते हैं। अरस्तु दास प्रथा को हीगल, निरंकुश शासन को टी एच ग्रीन निजी संपत्ति के अधिकार को नैतिक समझते हैं। हेरोल्ड लॉस्की भी अधिकारों की आदर्शवादी व्याख्या करते हैं, किंतु वे निजी संपत्ति के अधिकार, निरंकुश शासन और दास प्रथा को अनैतिक मानते हैं। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन द्वारा किया गया है। उनके अनुसार किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। समाज वर्गों में विभाजित रहता है। जिस समाज में जिन लोगों का प्रभुत्व होता है, वास्तव में वे वर्ग ही अधिकारों का उपयोग करते हैं। दास प्रथा पर आधारित आर्थिक व्यवस्था जिस समाज में पाई जाती है, वहां सारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार केवल मालिक वर्ग के लिए दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार सामंतवादी समाज में अधिकारों का वास्तविक उपभोग सिर्फ सामंत वर्ग करता है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों के विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भली भांति के प्रयत्न किए गए। इंग्लैंड जैसे अपेक्षाकृत प्रगतिशील पूंजीवादी प्रजातंत्र में भी वयस्क मताधिकार का सबसे पहला प्रयोग 1929 के आम चुनाव में ही किया जा सका। पूंजीवादी प्रजातंत्रों में मजदूर को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयत्न बहुत वर्षों तक किया गया। पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है और पूंजीपतियों को असीमित पूंजी जमा करने की स्वतंत्रता होती है। सामंतवादी क्रांति के बाद पूंजीपतियों, जमींदारों और दूसरे शोषक वर्गों की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और या उसे सहकारी स्वामित्व में ले लिया जाता है। उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। शोषक वर्गों के सदस्यों को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वे इन अधिकारों का उपयोग समाजवादी क्रांति को उलटने के लिए करते हैं। अतः अधिकारों के चरित्र को समझने के लिए उस देश और काल की आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मार्क्सवादी सिद्धांत अधिकारों के भौतिक पहलू पर विचार करता है। भौतिक आधार की अवहेलना करने पर किसी देश की अधिकार प्रणाली का अध्ययन ठीक तरह से नहीं हो सकता। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर को समझ लेने पर यह समझ में आ सकता है कि चीन में काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देकर कार्यान्वित कर क्यों कर दिया गया और भारत में इसे मूल अधिकार का दर्जा न देकर निर्देशक सिद्धांतों का दर्जा क्यों दिया गया और इसे व्यवहार में कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित पूंजीवादी व्यवस्था है जो नागरिकों को रोजगार देने में सफल नहीं हो सकती। चीन की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक विकसित समाजवादी व्यवस्था है जो नागरिकों को रोजगार देने में पूर्ण रूप से सफल है। उदारवादी विचारक मनुष्यों के व्यक्तित्व अधिकारों पर विशेष जोर देते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। इसके विपरीत मार्क्सवादी लेखक समाज के सामूहिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी का कथन है कि जिन अधिकारों को अन्य लेखकों ने प्राकृतिक या नैतिक अधिकार माना है या जिन्हें ऐतिहासिक परंपरा या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है या जिन्हें उदारवादी उपयोगिता या व्यक्तित्व के विकास के आधार पर स्वीकार करते हैं, वे अधिकार वास्तव में उस समाज की भौतिक परिस्थितियों और उनके द्वारा निर्धारित वर्ग संबंधों पर अविलंबित है। अरस्तु ने स्वामी वर्ग के दास रखने के अधिकार को सिद्ध करने के लिए इतिहास के उदाहरणों, प्राकृतिक नियमों, नैतिक आदर्शों और प्रचलित कानून की शरण ली थी, परंतु वास्तव में इसके पीछे दासता पर आधारित अर्थव्यवस्था और उसमें निहित स्वामी वर्ग के आर्थिक स्वार्थ छिपे हुए थे। निजी संपत्ति को हॉफ ने कानूनी अधिकार माना, लॉक ने उसे प्राकृतिक अधिकार बताया, बर्क ने उसे ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर स्वीकार किया, बेंथम ने उसे उपयोगिता के आधार पर मान्यता दी और T.H. ग्रीन ने उसे व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक रूप से आवश्यक समझा। मार्क्स ने अनुसार निजी संपत्ति का अधिकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसमें निहित वर्ग संबंधों के लिए एक अनिवार्य शर्त है। केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को समाप्त कर दिया जाए तभी निजी संपत्ति के अधिकार का अंत किया जा सकता है। अधिकारों का वर्गीकरण। उदारवादी लेखक अधिकारों को दो वर्गों में बांटते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकारों में जीवन रक्षा का अधिकार, विचार और भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, कानून के सामने समानता, न्याय पाने का अधिकार और निजी संपत्ति रखने का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों से उनका तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिक अपने देश की राजनीतिक और शासन में भाग लेते हैं। चुनाव में वोट देने का अधिकार, उम्मीदवार होने का अधिकार, योग्यता के अनुसार पद पाने का अधिकार आदि राजनीतिक अधिकारों के उदाहरण हैं। वर्तमान युग में लोकतंत्र का युग है, अतः अब सभी देशों में उपयुक्त अधिकारों को मान्यता दे दी गई है। लिखित संविधान इन्हें जनता के मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं और न्यायालय उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार उपयुक्त अधिकार उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा के अधिकार हैं। समाजवादी समाज में नागरिकों को सामूहिक रूप से सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से काम पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या वृद्धा अवस्था में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार आदि शामिल हैं। भारत के संविधान में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना या ना करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इसके विपरीत उदारवादी व्यक्तिवादी अधिकारों को मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल किया गया है जिनका संरक्षण हमारे देश के न्यायालय करते हैं। जीवन का अधिकार। यह आश्चर्य की बात है कि जीवन का अधिकार भी पूर्ण रूप से केवल आधुनिक युग में स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में कुटुंब के सम्मुख व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं थी। सपाटा में दुर्बल बालकों को मार दिया जाता था। कुछ स्थानों में लड़कियों को मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। यूरोप के पादरी कुमारी स्त्री को जादूगरनी बताकर आग में जला देते थे। भारत में 18वीं सदी के तक विधवा स्त्री को सती के रूप में जलाया जाता था। गुलामों को मार डालने पर कानून मालिकों को कोई दंड नहीं देता था। हमें याद रखना चाहिए कि गुलामी की प्रथा अमेरिका में 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक कायम थी। अफ्रीका में दासों के व्यापार में लाखों निग्रो दासों को जान से मार दिया गया। यूरोपीय प्रवासियों ने अमेरिका में जाकर वहां की आदिम जातियों का कुर्तापूर्वक संहार कर डाला। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है और जीवन की सुरक्षा के अधिकारों को सभी सभ्य देशों की वैधानिक व्यवस्था में स्थान मिल गया है। इस अधिकार का यह अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की राज्य की ओर से रक्षा होनी चाहिए। राज्य का प्रत्येक नागरिक के जीवन का समान महत्व प्रदान करेगा। हमारे लिए आज जीवित रहना एक सामाजिक कर्तव्य ही माना जाता है। आत्महत्या करना कानून द्वारा दंडनीय होता है। इस प्रकार हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों के जीवित रहने के अधिकार का सम्मान करें। इसलिए जो व्यक्ति हत्या का अपराधी है वह स्वयं भी जीवित रहने के अधिकार को खो देता है। आजकल कुछ समाज सुधारक मृत्युदंड का नागरिक आदर्शों के नाम पर विरोध करते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य जब किसी व्यक्ति की जान लेता है तो वह ऐसा क्षणिक आवेश में करता है। मृत्युदंड की प्रथा के कारण अपराधी को आत्मीयता के सुधार का अवसर नहीं मिलता। मृत्युदंड के समर्थक इस युक्ति को ठीक नहीं समझते। उनका विचार है कि मृत्युदंड की समाप्ति के से समाज के निकृष्ट तत्वों की हत्या करने का बढ़ावा मिल जाएगा और शांतिप्रिय नागरिकों का जीवन और भी अधिक खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हत्यारों के आत्म सुधार के लिए संपूर्ण समाज की शांति को खतरे में डालना अनुचित है। आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में ही शामिल है। स्वतंत्र देशों में आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का भी अधिकार होता है। उपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादी शासक जनता को हथियार देने से डरते हैं, इसलिए ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था अथवा उस पर कड़ा नियंत्रण था। टी एच ग्रीन ने आत्मरक्षा और जीवन के अधिकार की चर्चा करते हुए बताया है कि आत्मरक्षा के आधार पर ही युद्ध की बर्बरता को न्यायसंगत माना जा सकता है। जिन लड़ाइयों का उद्देश्य आक्रमण द्वारा साम्राज्य विस्तार करना हो उन्हें न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। ग्रीन के अनुसार युद्धों में जो हिंसा होती है वह मनुष्य के जीवन संबंधी अधिकार का उल्लंघन है। हीगल के इस मत से कि युद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ग्रीन बिल्कुल सहमत नहीं है। संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार से संबंधित है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि वह विवाह करे और संतान द्वारा अपना वंश चला सके। समाज व्यक्ति के इस अधिकार को स्वीकार करता है, परंतु असीमित रूप से नहीं। कोढ़ियों, पागल या खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाना उचित है। जहां नागरिक को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है, वहां उसका यह कर्तव्य भी है कि अधिक बच्चे पैदा कर समाज पर व्यर्थ का भार न बढ़ाए। जितना बड़ा उसका परिवार हो उसके लिए वह भरण पोषण और शिक्षण की व्यवस्था भी कर सके। लोक कल्याणकारी या समाजवादी देशों में राज्य के द्वारा बालकों के पालन पोषण और उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि समाज उसके पालन पोषण और शिक्षण का उचित प्रबंध करे जिससे आगे चलकर वह योग्य नागरिक बन सके। अगर परिवार के द्वारा बालक की यह आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सके तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बालकों की इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे। बालक राष्ट्रीय निधि है और उन्हीं पर समाज की उन्नति भविष्य में निर्भर है। जीविका का आधार वर्तमान युग में जीवन के अधिकार के आर्थिक पक्ष की विशेष चर्चा होने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार के साथ ही जीविका का आधार भी होना चाहिए। जीविका पर ही जीवन अवलंबित निर्भर है। भारत में ही अनेक युवक प्रतिवर्ष जीविका के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। जीविका के अभाव में बहुत से लोग और उनके परिवार के सदस्य भूख और बीमारी के शिकार बन जाते हैं। इसलिए इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि समाज द्वारा प्रत्येक नागरिक को कोई उपयोगी कार्य अवश्य मिलना चाहिए। अपने कार्य के लिए उसे न्यूनतम वेतन की गारंटी भी मिल जानी चाहिए। यदि समाज उसे कोई रोजगार न दे सके तो उसके बेकार रहने के समय तक बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। समाजवादी देशों में राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक नागरिक को रोजगार दे और उसका न्यूनतम वेतन निर्धारित करे। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध रोजगार के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करे और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए न्यूनतम शिक्षा का प्रबंध करे। राज्य जिस नागरिक को काम न दे सके उसे बेकारी के समय में जरूरी आर्थिक सहायता दे। सोवियत रूस या जनवादी चीन में जीवन के अधिकार का केवल यह तात्पर्य नहीं होता कि राज्य कानून के जरिए समाज में शांति और व्यवस्था रखे जिससे नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे। यह जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को वे सभी सुविधाएं मिले जिनको प्राप्त करके वह अपने जीवन को संतुष्ट, सुखमय और सुसंस्कृत बना सके। इसलिए साम्यवादी देशों में राज्य की ओर से नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, जीविका और न्यूनतम वेतन का प्रबंध किया जाता है। परंतु जब राज्य नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार और सुविधाएं देता है तो उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ईमानदारी से परिश्रम करके समाज की सामूहिक उन्नति में समुचित योगदान दें। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास में बड़े बड़े बलिदान हुए, खून की नदियां बहाई गईं और रोमांचकारी क्रांतियां हुईं। कभी कभी स्वतंत्रता के नाम पर घृणित काम भी हुए। संसार में स्वतंत्रता की भावना के अतिरिक्त बहुत कम ऐसे आदर्श हैं जो मनुष्य की भावना को इतना अधिक प्रभावित किया हो। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। कुछ लोग स्वतंत्रता का अभिप्राय सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना समझते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक बदनामी कहलाएगी। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। इस प्रकार की बंधनहीन स्वतंत्रता केवल अराजकता के वातावरण में प्राप्त हो सकती है। फिर भी कुछ व्यक्तिवादी लेखक स्वतंत्रता की परिभाषा बंधनों से आज़ादी के रूप में करते हैं। वह स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा है। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है समाज कुछ नियम बनाकर एक व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न होने दें। अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जिनका पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा। इन नियमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगेंगे। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता की रक्षा के नियमित सामाजिक बंधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन सामाजिक बंधनों को स्वतंत्रता में बाधक न मानकर सहायक समझा जाना चाहिए। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी सामाजिक बंधन स्वतंत्रता में सहायक है। अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक भी सिद्ध हो सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार। कुछ लोगों का कथन है कि मनुष्य प्रकृति की ओर से स्वतंत्र है। प्रकृति ने तो मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है किंतु समाज ने उसे प्रतंत्र कर रखा है। यह विचार भ्रांति मूलक है। प्राकृतिक अवस्था में बलवान मनुष्य दुर्बल मनुष्यों को सताया करते थे और इस प्रकार की कोई शक्ति ना थी जो दुर्बल लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। जब लोगों की जिंदगी ही सुरक्षित नहीं थी तो उनकी आज़ादी की रक्षा किस प्रकार हो सकती थी। अतः वास्तविक स्वतंत्रता समाज में ही प्राप्त हो सकती है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। कानून समाज में राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। अतः राज्य ही कानून द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता केवल आदर्शवादी कल्पना है। रूसो जो आरंभ में प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते थे अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्वतंत्रता वास्तव में समाज की देन है। T.H. ग्रीन का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी सहज इच्छाओं और प्रेरणाओं का दास था। समाज के बनने के उपरांत ही मनुष्य ने अपने विवेक और तर्क की सहायता से इन सहज इच्छाओं और प्रेरणाओं को वश में करना सीखा। मनुष्य अपनी भौतिक, मानसिकता और नैतिक शक्तियों का विकास समाज में ही रहकर कर सकता है। यदि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तित्व का विकास ही है तो इसका उपयोग समाज में रहकर ही संभव है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक लॉक भी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व सरकार की ओर और कानून पर होता है। नागरिक स्वतंत्रता अतः राजनीतिक विज्ञान में हम प्राकृतिक स्वतंत्रता को नहीं अपितु नागरिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। राज्य प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सुविधाएं देता है। वह उन्हें विचार, भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता देता है। जिस समाज में नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता नहीं होती, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। इस प्रकार नागरिकों को इच्छा अनुसार घूमने फिरने की और निवास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संघ बनाकर कार्य करने की आज़ादी भी नागरिक स्वतंत्रता की आवश्यक अंग है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी नागरिक स्वतंत्रता से सम्मिलित है। प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार धर्म पालन की सुविधा होनी चाहिए। इतिहास को देखने से पता चलता है कि नागरिक स्वतंत्रता का विकास धीरे धीरे हुआ है। निरंकुश शासन के अंतर्गत नागरिकों को विचार, भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता मिलना असंभव था। वैधानिक और लोकतंत्रात्मक शासन के विकास के पश्चात ही लोगों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। नागरिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों में राज्य की ओर से अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य धर्म या संस्कृति के नाम पर तर्कहीन और अन्यायपूर्ण रूढ़ियों का परंपराओं में कोई सुधार नहीं कर सकता। उदारवादी लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता राजनीतिक प्रणाली का अनिवार्य अंग मानी जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का एक लक्ष्य यह भी है कि नागरिक अपने दृष्टिकोण के अनुसार सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके। समाचार पत्रों द्वारा नागरिक न केवल सरकार की नीतियों पर बल्कि किसी भी राष्ट्रीय समस्या पर अपने विचार निर्भीक रूप से प्रकट कर सके। न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। एडम स्मिथ का मत था कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता से है। जिस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य सामंतों की सामाजिक शक्ति को समाप्त करना था, उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य मध्य वर्गीय लोगों और व्यापार पर लगे हुए सामंतवादी प्रतिबंधों को मिटाना था। एडम स्मिथ का विचार था कि विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत पूंजी को कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो। राज्य अनावश्यक करों के द्वारा पूंजी के मुनाफों को कम न करे, क्योंकि इससे उद्योग के विकास में बाधा पहुंचती है। आयात और निर्यात पर भारी करों का बोझ न लादा जाए और राज्य पूंजीपति और मजदूरों के संबंधों का मजदूरों के हितों में किसी प्रकार का नियंत्रण न करें। आर्थिक स्वतंत्रता की यह आरंभिक उदारवादी और विकासवादी परिभाषा है। आर्थिक स्वतंत्रता की उपयुक्त परिभाषा से हेरोल्ड लास्की सहमत नहीं है। उनका कथन है कि निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ केवल पूंजीपतियों की स्वतंत्रता है, जिसका आवश्यक परिणाम बहुसंख्यक श्रमिकों की आर्थिक प्राधीनता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के आश्रित और प्राधीन होकर रहते हैं। कॉल मार्क्स का कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ मजदूरों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो केवल समाजवादी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर न केवल आर्थिक रूप से पराधीन होता है, अपितु घना भाव के कारण वह अपनी नागरिक स्वतंत्रता का भी समुचित उपयोग नहीं कर सकता। समाचार पत्रों का संचालन और स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में होने से जिन समाचार और विचारों को जनता के सम्मुख रखा जाता है, वे मजदूर वर्ग के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। धर्म संगठनों पर धनवान व्यक्तियों के अनुचित प्रभाव के कारण धर्म का उपयोग पूंजीवादी शोषण की प्रणाली का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इसलिए मार्क्सवादियों का विचार है कि मजदूरों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीवादी शोषण की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के विकास के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता का विकास हुआ। निरंकुश राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि नागरिकों को देश के शासन प्रबंध में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। शासन प्रबंध में भाग लेने का अधिकार केवल लोकतंत्रात्मक राज्य नीतिक प्रणाली में दिया जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू वैधानिक स्वतंत्रता भी है। राज्य को कानून द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व न्यायालयों पर होता है। किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग साबित किए सरकार बंदी नहीं बना सकती और न उसकी स्वतंत्रता पर किसी अन्य प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। लोकतंत्रात्मक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक संघों और राजनीतिक दलों के निर्माण की और उनमें कार्य करने की आज़ादी होती है। उसे केंद्रीय सरकार और संसद के सदस्यों एवं प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों और विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार होता है और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर वह किसी भी निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ सकता है। योग्यता और गुण के आधार पर प्रत्येक नागरिक ऊंचे से ऊंचा सरकारी पद नियुक्त किया जा सकता है। जाति, वंश, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय या लिंग के आधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करना लोकतंत्र के युग में अनुचित समझा जाता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल स्वामी वर्ग को मिली हुई थी। 19वीं सदी तक इंग्लैंड में प्रतिनिधि शासन और मताधिकार को भूमि और संपत्ति के आधार पर सीमित कर दिया गया था। अभी कुछ वर्ष पहले तक बहुत से सभ्य देशों में स्त्रियों को राजनीतिक स्वतंत्रता के योग्य नहीं समझा जाता था। साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के निवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अयोग्य समझते थे। फासिस्ट और नाजी शासन प्रणालियों में राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई स्थान नहीं दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक स्वतंत्रता को नस्ल के आधार पर सीमित कर दिया गया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अनेक देशों में आज सैनिक अधिनायक तंत्र स्थापित है। वहां की जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। साम्यवादी देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का रूप भिन्न भिन्न होता है। एक ही राजनीतिक दल के माध्यम से जनता के शोषित वर्ग राजनीतिक प्रणाली में भाग लेते हैं। शोषक वर्गों को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। सिडनी और मिट्रिस वेब का विचार है कि सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों में मजदूर वर्ग और अन्य शोषित वर्गों की राजनीतिक और प्रशासन में योगदान देने का व्यापक अवसर मिलता है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण अंत हो जाने के कारण समाजवादी समाज में अनेक राजनीतिक दलों की जरूरत महसूस नहीं की जाती। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। आधुनिक युग से पहले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का कोई स्पष्ट और मूर्त रूप नहीं था, परंतु फिर भी कबीले, जाति और समूह की रक्षा की भावना का उदय बहुत पहले हो गया था। मध्ययुग में राष्ट्रीयता की भावना सामंतवादी संघर्षों के कारण विकसित न हो सकी। प्राय एक राष्ट्रीयता के लोग विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में बटे रहते हैं या एक ही साम्राज्य के अंतर्गत अनेक जातियों के लोगों को मिलजुल कर रहना पड़ता था। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ राष्ट्रीयता का विकास हुआ और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग भी उठाई गई। राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भयंकर युद्ध लड़े गए और हिंसात्मक क्रांतियां हुईं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों ने पश्चिम साम्राज्यवाद का विरोध करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वाधीनता एक प्रकार से सभी अन्य स्वतंत्रताओं की जननी है। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उपरांत ही प्राप्त हो सकी। विदेशी शासक कभी भी शासित प्रजा की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। आर्थिक क्षेत्र में विदेशी साम्राज्यवादियों का उद्देश्य जनता का शोषण करना ही होता है। अतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना उपनिवेशों को आर्थिक शोषण से मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था कि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता अभी कुछ वर्ष पहले ही लंबी पराधीनता के पश्चात प्राप्त की है। अतः हम भारतवासी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का महत्व भली भांति समझ सकते हैं।